संगत ने प्रार्थना की महाराज जी कृपा हुई। जब महाराज जी वापस आए हैं ना अमृतसर में, तो वहां आकर के महाराज जी ने यह शब्द उच्चारण किया है गुरु अर्जन देव जी ने, गुर पूरे कृपा धारी। कहते पूर्ण गुरु श्री गुरु रामदास महाराज जी, गुरु नानक देव जी महाराज, मेरे गुरु ने कृपा की है मेरे ऊपर, प्रभ पूरी लोच हमारी, हमारी जो लोच, हमारी जो इच्छा है वह पूर्ण की है। कौन सी इच्छा हमारी? श्री हरिमंदर साहिब जी की सेवा, अमृतसर सरोवर की सेवा, जो हमारे को पिता गुरु जी ने ड्यूटी लगाई है वो सेवा हमारी पूरी हो गई है। श्री हरिमंदर साहिब जी तैयार हो गए, अमृतसर सरोवर की तैयारी हो गई है। उसके बाद कहते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमय वाणी जो एकत्र करके लिखवाई है वो भी संपूर्ण हो गई है। गुरपूरे कृपा धारी, पूर्ण गुरु ने कृपा की है हमारे ऊपर, प्रभ पूरी लोच हमारी। ये जो हमारी इच्छा थी ना सेवा करने की, सारी गुरुपूरे ने पूरी की है। जब पूर्ण गुरु मिल जाते हैं तो फिर जितनी इच्छा होती है ना सारी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो आप्त काम है पूर्ण काम है। जब ऐसे सतगुरु मिलते हैं तभी जिज्ञासु की इच्छा की पूर्ति होती है। हर एक जिज्ञासु की इच्छा क्या है, क्या चाहते हैं लोग? लोग चाहते हैं कि हमारे को सुख प्राप्त हो, तो अथवा मोक्ष चाहते हैं सब लोग। तो जो मोक्ष चाहते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, यानी सुख चाहते हैं सब लोग। कैसा सुख चाहते हैं? जिस सुख की कभी निवृत्ति ना हो ऐसा सुख चाहते हैं। और दुख कोई नहीं चाहता, सुख को मांगे सबको दुख ना मांगे कोई, सभी लोग सुख चाहते हैं दुख नहीं चाहता कोई भी। सुख है को दुख अगला, परंतु संसारिक पदार्थों में सुख लेश मात्र भी नहीं है। संसारिक पदार्थ कितने में कोई भोग लेता है उसको क्षणिक सुख मिल सकता है, सदीवी सुख नहीं मिलता। यदि सुख की प्राप्ति करनी है, एक संसारिक सुख है जो विनाशशील है, जो विनाश हो जाता है, क्षण भंगुर है, थोड़ी देर का है, उस सुख के लिए लोग दौड़ते हैं लेकिन दुखी होते हैं। इस सुख ते सिर्फ ब्रह्म डराना, सो सुख हम साच कर जाना, ऐसा कहते हैं महाराज जी। कि इस विषय का सुख, जो विषयों का सुख है ना, इस सुख से सिर्फ ब्रह्म डराना, जो देवता लोग हैं वो इस विषय का सुख से डरते हैं, विषयों का सुख नहीं चाहते। सो सुख हम साच कर जाना, हम लोगों ने उस सुख को सत्य मान रखा है। पदार्थों में जो सुख मिलता है हमारे लिए वही सबसे बड़ा सुख लगता है, पर वो सुख क्षणिक है। जो आत्मिक सुख है वह सदैव रहने वाला है। लोगों की एक ही इच्छा है कि हमारे को ऐसा सुख मिले कि जिसका कभी नाश ना हो, और दुख की निवृत्ति चाहते हैं अत्यंत तक कि कभी दुख हो ही ना। इसी का नाम मुक्ति है, इसी को मुक्ति कहते हैं, दुख की अत्यंत तक निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। तो जब मुक्त रूप सुख चाहिए तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु की शरण गए सदीवी सुख नहीं मिलता। अनित्य सुख तो संसार में है, प्रारब्ध के अनुसार मिल जाता है, लेकिन उस सुख के पीछे दुख छिपा रहता है। जो पदार्थ एक आदमी के लिए सुख देने वाला है वही पदार्थ दूसरे को दुखी करता है। एक ही घर में रहते हैं कितने परिवार के सदस्य रहते हैं, उस घर में एक परिवार का सदस्य सुखी है और दूसरा दुखी है। घर तो एक ही है लेकिन वो सबको क्यों नहीं सुख देता। एक ऐसे पदार्थ जैसे आप खाने पीने वाले पदार्थ ले लो, कुछ मीठे पदार्थ जो है किसी को सुख देते हैं और जो रोगी है उसको दुख देते हैं। तो इसलिए इन पदार्थों में सुख नहीं है। यदि ये पदार्थ सुख रूप होते तो सबको सुख देते। पदार्थ वही है, एक आदमी को सुख देता है दूसरे को दुख देता है। धूप है या हवा है या अग्नि है, जितने तत्व हैं उसमें से एक तो धूप दो देख करके सुखी है, दूसरा धूप में बैठ करके दुखी है। तो इसमें धूप का दोष थोड़ी है, धूप तो सबको बराबर दे रहा है परमात्मा, सूर्य भगवान देते हैं। यानी इन पदार्थों में तत्वों में सुख नहीं है, ये हमारे मन की भ्रांति है कि ये पदार्थ सुख रूप है। तो सुख तो हमारे अंदर है, सुख दुख हमारे मन की वृत्ति है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि जिस इच्छा की पूर्ति हम चाहते थे ना, वो हमारी इच्छा पूर्ण हो गई। इच्छा कौन पूर्ण कर सकता है? मुक्ति रूपी इच्छा, आत्मिक सुख वाली इच्छा कौन पूर्ण कर सकता है? इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके वस है काम देना। वो केवल हरि है, परमात्मा है, प्रभु है। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता, सभी इच्छाओं का पूरक है और सर्व सुख दाता, किसी एक सुख का दाता नहीं, सारे जितने सुख है सबको देने वाला है, संपूर्ण सुखों का दाता है, इच्छा पूरक है। क्या है उसके पास, कैसे सुख देता है? जाके वास है काम देना। माना जाता है ना कि काम धेनु गौ के पास कोई भी इच्छा करो तो पूर्ण हो जाती है। तो जो हरि परमात्मा है उसका नाम ही काम धेनु है, उसका नाम ही कल्प वृक्ष है। काम धेन हर हर गुण गाम, हरि के जो गुण है, हरि का जो सिमरण है वो काम धेनु है। जब राम नाम का, वाहेगुरु का, अल्लाह का, प्रभु का, किसी भी नाम से हम प्रभु को याद करते हैं ना, नाम का स्मरण करते हैं, तो कहते हैं इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता है, सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकि सरणी पाई है। तो जब उस प्रभु की कृपा होती है तो फिर गुरु का मिलाप होता है, गुरु के साथ भेंट होती है। तो जब पूर्ण गुरु मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है, गुर पूरे कृपाधारी, वह कृपा कर देते हैं, तरस कर देते हैं शिष्य के ऊपर। जब गुरु शरण में जाते हैं जिज्ञासु, तो किस लिए? आत्मिक प्राप्ति के लिए जाते हैं। तो गुर पूरे कृपाधारी, गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं पूर्ण गुरु महाराज ने कृपा की है, प्रभु पूरी लोच हमारी। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि माता गंगा जी के मन में एक इच्छा रहती थी कि संसार के सुखों की, तो कहना ही क्या, उनके पास कौन सा संसार का पदार्थ है जो नहीं था। और गुरु महाराज जी के घर में माता गंगा जी की एक इच्छा है कि हमारे को पुत्र की प्राप्ति हो। तो जब गुरु अर्जन देव महाराज जी ने युक्ति बताई माता जी को, तो माता जी को बाबा बुढ़ा जी के पास भेजा। तो बाबा बुढ़ा जी को निमित्त बना करके तो महाराज जी ने कृपा की गुरु हरगोबिंद महाराज जी का अवतार हुआ, इसलिए कहते हैं गुरपुर कृपाधारी। पूर्ण गुरु गुरु रामदास महाराज जी की कृपा हुई है तो प्रभु पूरी लोच हमारी, जो लोच थी जो इच्छा थी ना पुत्र की, के कोई गद्दी में गद्दी का कोई वारस, कोई प्रभु का अवतार हमारे घर में आए तो कृपा हो गई है। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का अवतार हुआ है। संसार की इच्छावां और आत्मिक इच्छा, मुक्ति की इच्छा, सारिया इच्छावां की पूर्ति हुई है। प्रभु पूरी लोच हमारी।
अरे स्नान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए,
तो पूरी हो गई है इच्छा। अमृतसर सरोवर तैयार हो गया, श्री हरिमंदर साहब तैयार हो गया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपूर्णता हुई है। अब महाराज जी ऐसा भी अर्थ करते हैं कि अब जब महाराज जी अमृतसर वापस आए तो उस अमृत सरोवर में स्नान करके, महाराज जी कहते हैं जो गुरु के महल है जहां महाराज जी निवास करते थे माता जी के सहित, कहते कि अब अमृत सरोवर में स्नान करके तो गुरु के महलों में महाराज जी कर स्नान ग्रह आए, अपने घर में वापस आए हैं। अथवा अब अमृत सरोवर जैसे स्नान करने से अमृत सरोवर में क्या होता है, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते, रामदास सरोवर नीका जो नावे सो कुल उधा, जो नावे सो कुल तरावे, उधार हुआ है जीव का। ऐसा गुरु रामदास महाराज जी ने अमृत सरोवर तैयार किया है कि जो नावे सो कुल तरावे, जो उस अमृत सरोवर में स्नान कर लेता है उसका अपना की उसकी सभी कुल का ही उद्धार हो जाता है। रामदास सरोवर नाते जब उसमें कोई श्रद्धा से भावना से स्नान करता है सब उतरे पाप कमाते, उसके जितने पाप हैं सब का नाश हो जाता है। या जो ये वाणी रूप सरोवर है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का वाणी रूप सरोवर है उसमें स्नान किया, गुरु का उपदेश रूप जो तीर्थ है उसमें स्नान करके महाराज कहते क्या हुआ, गृह आए कर स्नान। एक वचन महाराज जी कहते हैं कि स्नान तो बाहर भी हम लोग हर रोज करते हैं पर आप लोग हर रोज पढ़ते हैं, गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं अंतर्गत तीर्थ मल नहाओ। एक हमारे अंदर भी तीर्थ है, अंतर्गत तीर्थ हमारे अंदर स्थित जो तीर्थ है ना, मल नहाओ उसमें महाराज जी कहते हैं स्नान करो हर रोज, अंतर्गत तीर्थ मल नहाओ। ऐसा जो हमारे अंदर परमपिता परमात्मा का निवास है ना, जो हमारा आत्मिक रूप तीर्थ है, आत्मिक तीर्थ है, निज स्वरूप रूपी तीर्थ है, उस तीर्थ में स्नान करते हैं जो लोग। महाराज जी कहते हैं जब गुरु की कृपा हुई ना हमारे ऊपर तो हमने गुरु के उपदेश रूपी तीर्थ में स्नान किया तो ग्रह आए। अब हम गुरु उपदेश रूपी तीर्थ में स्नान करके यानी गुरु के उपदेश की कमाई अभ्यास करके तो हमारा अज्ञान अंधेरा जब है वो दूर हुआ, अज्ञान की निवृत्ति हुई तो गृह आए। अब हम अपने असली घर में आ गए, जो हमारा स्वरूप रूपी घर है उसमें आ गए, आत्मिक जो घर है उसमें स्थित हो गए। क्योंकि ये बाहर वाला भी एक घर है, एक हमारा असली घर है, जिसके लिए महाराज जी कहते हैं एक वचन गुरु राम अर्जुन देव जी महाराज श्री राग में प्रमाण करते हैं कि जो घर छट गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तद वर्तना तिसकी चिंता ना है। ऐ भाई जो घर संसार रूपी घर है ना, ये तो छोड़ करके जाना है, लेकिन इसी को संभालने में तेरी वृत्ति लगी हुई है। जिथे जाए तद वर्तना तिसकी चिंता ना है, जिस घर में जा करके तेरे को टिका मिलेगा, विश्राम मिलेगा, उस घर की तेरे को चिंता नहीं है। घर कहते हैं या डेरा कहते हैं, यानी रहने का जो स्थान है, डड्डा डेरा एहो नहीं, जह डेरा तह जान, वह डेरा का संजमो गुर कै शब्द पसान, या डेरा को श्रम कर कान है, जाकर तसु नहीं संग चान है, वह डेरा की सोमित जान है, जाको दृष्ट पूर्ण भगवान है, उस असली घर की कहते तू चिंता नहीं करता। तो महाराज जी कहते जब गुरु ने कृपा की है ना, तो हम अपने असली घर में आत्मिक घर में विश्राम किया है, टिक गए हैं, कर स्नान, उस गुरु उपदेश रूपी तीर्थ में स्नान करने से क्या हुआ। यानी जब स्नान करते तो किस लिए करते हैं, मैल को उतारते हैं ना, पवित्रता के लिए स्नान करते हैं। जल से स्नान करते तो क्या होता है, जल से स्नान करने से हमारे शरीर को जो अंगों को धूल मिट्टी होती है दूर हो जाती है, और यदि हमारे कपड़े गंदे होते हैं तो साबुन आदि सर्फ आदि से पवित्र हो जाते हैं, परंतु जो हमारे मंतह करण में मैल है ना, जो मन में हमारे मैल है, उसका स्नान कैसे कराएंगे, उसको कैसे पवित्र कर सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं भरिए हाथ पैर तन देह पानी धोते पुत्र सुखे मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओह धोए। फिर कहते भरिए मत पापा कै संग, ओह धोपे नावे कै रंग। जो हमारी मत कथ अंतःकरण, अंतःकरण जो चतुष्टय है, वह जन्म जन्मांतरों की अज्ञान की मैल से अपवित्र है, संस्कारों से पवित्र अपवित्र है, तो वो नाम के द्वारा पवित्र होता है। तो जब नाम यानी उपदेश या मंत्र गुरु से प्राप्त हुआ, उसके द्वारा क्या हुआ, उस नाम का अभ्यास करने से, उपासना करने से, निष्काम कर्म करने से अंतःकरण जब पवित्र हुआ, तो उस पवित्र अंतःकरण में अपने स्वरूप की अनुभूति हो गई। तो गुरु महाराज कहते हैं कार्य स्नान ग्रह आए, गुरु के उपदेश रूपी तीर्थ में हमने स्नान किया, तो हमारा अंतःकरण रूपी जो कपड़ा है ना, वह पवित्र हो गया। तो अब क्या हुआ, ग्रह आए, हम अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं।
आनंद मंगल सुख पाए,
अब ऐसी कृपा हो गई है, आनंद मंगल सुख पाए। अब आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है। अब हमारे को जो आनंद है ना, असली आनंद है, असली सुख है पाए, वो हमने प्राप्त कर लिया। अब जितने विघ्न है सभी की निवृत्ति हो गई, अब कोई विघ्न नहीं बचा। मंगल का अर्थ है कि जो अशुभ है ना, अशुभ वह सब नाश हो गया, जो हमारा अशुभ था वह गल गया। मंगल का अर्थ यही है कि जो हमारे जीवन में विघ्न थे उनकी निवृत्ति हो गई। हमारा जो विघ्न था ना वो क्या था, सबसे बड़ा विघ्न क्या था, अज्ञान। किस चीज में विघ्न डालता था वो, मुक्ति की प्राप्ति में विघ्न था बहुत बड़ा। जब हम कोई कार्य करते हैं तो मंगल करते हैं, किस लिए, मंगल का प्रयोजन क्या होता है, जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी निर्विघ्न समाप्ति, ये उसका प्रयोजन होता है। तो अब कहते हैं क्या हुआ, हमारे जीवन में मंगल आ गए, खुशी आ गई, जो हमारी मुक्ति में हमारे सदीव आत्मिक सुख प्राप्त करने में विघ्न था ना, अज्ञान रूपी विघ्न, अथवा जो मोह है, लोभ है, अहंकार है, जितने विकार हैं ये विघ्न थे सब, असली सुख को प्राप्त नहीं करने देते। अथवा जो देह का अध्यास है ये भी बहुत बड़ा विघ्न है। जब तक अहम बुद्धि है ना, तब तक, यानी अहंता रूप बुद्धि है, तब तक ब्रह्म बुद्धि नहीं उत्पन्न होती, ये बहुत बड़ा विघ्न था। अब अहम बुद्धि देह अध्यास रूपी विघ्न दूर हो गया, जो देह के साथ अहंता और पदार्थों के साथ ममता, ये बहुत बड़ा विघ्न है। हुआ क्या हमारे जीवन में, बोयो बीज अहम, कौन सा बीज बोया हमने, अहम अहंता का बीज। तो भट्ट साहबान कहते हैं जिसने अहंता रूपी बीज बोया है ना, उस बीज से एक पौधा पैदा हुआ, कौन सा, बोयो बीज अहम, तो क्या निकला, मम अंकुर, उसमें से क्या निकला। जब देह में अहंता हुई तो देह के साथ जितने संबंधक पदार्थ है उसमें ममता रूपी पौधा निकला है, ये भट्ट साहबान का वचन है, बोयो बीज अहम मम अंकुर, उसमें से जब अहम रूपी बीज बोया अहंता, देह अध्यास हुआ, तो इंद्रियों का अभिमान, प्राणों का अभिमान, पद का अभिमान, वर्ण का, जाति का, घर का, संपत्ति का ममता हो गई। बोयो बीज अहम मम अंकुर, इस प्रकार कहते करते करते पूरी आयु व्यतीत हो गई। ये बहुत बड़ा जो विघ्न था ना, अहंता ममता रूपी विघ्न, जब गुरु के तीर्थ रूपी उपदेश में स्नान किया, अंतःकरण पवित्र हुआ, तो क्या हुआ, आनंद मंगल सुख पाए। जो सदीवी कैसा सुख है, कहते हैं ऐसा सुख है कि जो कभी तीनों कालों में नाश नहीं होता। वो कहन कौन सा सुख है, अविनाशी सुख, ये किस कहीं बाहर से नहीं, यहीं से पता चलता है, गुरबाणी बताती है कौन सा सुख है, अविनाशी सुख, कौन सा, आपन आसन, ये भी साथ में बताते हैं महाराज, लक्षण करते हैं, डेफिनेशन बताते, परिभाषा बताते हैं कि कौन सा आत्मिक, कौन सा अविनाशी सुख है, अविनाशी सुख कौन सा, आपन आसन। आपन आसन का अर्थ क्या है, आपन यानी अपना, आसन का अर्थ है स्वरूप, जो अपना स्वरूप है ना उसमें आपन आसन, अविनाशी सुख आपन आसन, तय जन्म मरण को कहा, उसमें नहीं है जन्म मरण। जो अपना आसन है ना, यानी अपना आत्मिक स्थिति, आपन आसन का अर्थ है आत्मिक स्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना, वो कौन सा सुख है, आप आत्मिक सुख आनंद मंगल सुख पाए। ऐसा सुख है आत्मिक सुख, वो अविनाशी सुख है। आत्मिक जो स्थिति है तह जन्म मरण कहो कहां विनाशन, वहां विनाश नहीं है। वो ऐसा सुख है कि उस स्वरूप उस सुख को ना जन्म है ना मरण है, ऐसा वह सुख है। जब पूर्ण गुरु ने कृपा की है ना, तो पूर्ण गुरु की कृपा से उनके दिए हुए मंत्र या उपदेश या महावाक्य का हमने जब श्रवण मनन निदध्यासन शोधन किया, तत्व का संशोधन जब किया ना, तो उसमें से हमारे को आत्मिक स्थिति प्राप्त हुई, आनंद मंगल सुख पाए।
संतो हो राम नाम निस्तरिये।
महाराज जी कहते हे संतो, हे जिज्ञासु पुरुषो, राम नाम निस्तरिये, राम का नाम उच्चारण करने से, नाम स्मरण का अभ्यास करने से, तत्व चिंतन करने से निस्तरिये है। इस संसार से पार उतारा हो सकता है राम नाम से। राम का नाम, राम कहने में भेद है, तामह एक विचार। अब राम नाम तो सब लोग रटते रहते हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो राम नाम रटते ही रहते हैं, तो हमारा तो पार उतारा हुआ नहीं। हम लोग भी स्मरण करते हैं ना राम नाम का, लेकिन कोई पूछे कि आप मुक्त हो गए हो, आप सुखी हो गए हो, कोई आदमी कहता नहीं सुखी नहीं हूं, मुक्त नहीं हूं, तो क्या हुआ? जब राम नाम से पार उतारा होता है तो फिर क्यों नहीं हुआ? जिसने भी राम के नाम का स्मरण किया है, वो किसी जाति किसी वर्ण किसी योनि में हो, सबका पार उतारा हुआ है। उदाहरण मिलते हैं, जपहीन तपहीन कुलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी ते उतरे, कोई भी नहीं बचा ऐसा। लेकिन इसमें रहस्य क्या है? राम नाम का स्मरण करने से भी क्यों नहीं पार उतारा हो रहा? तो भक्त जी महाराज कहते हैं कि राम कहन में भेद है, नाम है एक विचार। सोई राम सबे कह है, सोई कौत कहार। रामे राम कहो कह बे माहे विवेक। यही तो सब रहस्य बता दिया है। कबीरा रामे राम कहो, उस राम को कैसे उच्चारण करना है, कौन सा राम है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सब हूं ते न्यारा। वो कैसा राम है? रामे राम कहो कह बे माहे विवेक। उसके कहने के लिए विवेक चाहिए। ऐसे तो महाराज कहते हैं राम राम सब को कहे, कहे राम ना होए। सारा संसार कहते राम राम कह रहा है, लेकिन कहे राम ना होए। कहने से, कहने का मतलब केवल कर्म कांड से नहीं, केवल राम राम रटने से नहीं, राम उच्चारण तो करना चाहिए, लेकिन केवल रटने से नहीं होता है। राम राम सबको कहे, कहे राम ना होए। केवल कहने से यानी रटने से, रटने मात्र से राम ना होए, राम नहीं बना जाता। राम नाम निस्तरीय का अर्थ है कि राम नाम से पार उतारा तो होता है अवश्य, पर राम बनना पड़ता है, राम नाम के साथ अभेद होना पड़ता है। जब तक अभेद नहीं होते तब तक द्वैत नहीं मिटती, जो अंदर द्वैत है ना, उपासक उपास से स्वयवक स्वामी भाव है, जब तक द्वैत है तब तक हम अलग हैं, प्रभु अलग है, तो उस कहने से बात नहीं बनती। राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए, सारा संसार राम नाम करता फिरता है लेकिन राम ना पाया जाए। कौन सा राम है वो जो प्राप्त नहीं हुआ? तो इसलिए कहते हैं भक्त जी महाराज कि राम कहन में भेद है, या रामे राम कहो कहबे माहे विवेक। कौन सा विवेक है? एक अनेक है मिल गया, यही तो है, ये विवेक है, ये भेद है। राम कहन में भेद है, एक बहुत बड़ा रहस्य है। तामय एक विचार है, एक उसमें विचार करने वाली बात है। सोई राम सबे कह, सोई कौतकहार। अब यही तो भेद है कि राम सोई राम सबे कह, सभी लोग उसी राम का चिंतन करते हैं। कौतकहार इस राम का लोग स्मरण करते हैं, कौतकहार जो लीला पुरुषोत्तम है उसका भी लोग करते हैं चिंतन। कौतकहार जनी ये विलास करता है, जो संसार को पैदा करने वाला है, संसार का रक्षक है, संसार का भक्षक भी है। तो रामे राम तो कहना चाहिए राम को, पर उसमें कहते एक विवेक की बात है, विवेक का अर्थ निश्चय करने वाली बात है कि उस राम को कैसे चिंतन करना है। ऐसे चिंतन करेंगे एक अनेक मिल गया, एक समाना एक, ऐसे राम नाम से निस्तारा होता है संता हो। राम नाम निस्तरी है, कहते हैं कि एक अनेक मिल गया, वो कौन सा एक राम सब होते न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा सोई कौतकहार, वो तो लीला पुरुषोत्तम है, उसका भी नाम जपते हैं लोग। पर कहते विचार ये है कि एक है वो राम, अनेक मिल गया इसलिए पहचान में नहीं आता। विचार नहीं ना जिसके पास, विवेक नहीं ना जिसके पास, कहते राम का नाम तो अवश्य रटो पर उसमें एक विवेक की बात है, उसमें एक विचार है, वो है कि एक राम कौन है? एक है वो सभी के अंदर जो विराजमान है, सबका जो अधिष्ठान है। सबै घट राम बोले, रामा बोले राम बिना को बोले रे, वो ऐसा है कि सभी के अंदर है, सब उसी का ही उच्चारण करते हैं। जो कुछ भी कहीं से आवाज आती है वो बिना राम के कुछ भी नहीं है। वो कैसा राम है जो सबे घट राम बोले, वो कैसा है? वो ऐसा है कि एक एक है वो, अनेक है मिल गया, एक होता हुआ भी अनेक में उसका भ्रांति होती है लोगों को, भाई ये संसार में वो राम कैसा है, यानी एक होता हुआ अनेक रूप में विभक्त हो गया, एक अनेक है मिल गया और एक समाना एक। जब सभी में मिल जाता है अथवा सभी का आकर्षण कर लेता है तो फिर एक है, एक होता हुआ अनेक में मिला हुआ भी वह एक है। इस प्रकार जब संत लोग उसका चिंतन करते हैं, संत राम नाम निस्तरीय,
उठता बैठता हर हर ध्याय, पन दिन सुकृत करिय।
उस राम का चिंतन करने का समय कौन सा है? उठत बैठत, उठते हैं अथवा बैठते हैं, यानी हर पल में उठत बैठत सोवत, उठते बैठते सोवते हर हर नाम ध्याई। उठत बैठत सोवत नाम, जब उठते बैठते हर श्वास में उसका चिंतन करते हैं ना, हर हर ध्याई हरि हरि राम राम वाहेगुरु वाहेगुरु जब करते हैं तो फिर क्या होता, कैसे उठत बैठत हर हर ध्याई। ए जग्यासु, यदि तेरे को आत्मिक सुख चाहिए तो उठते बैठते हर समय उसका स्मरण करो। यदि हर समय स्मरण नहीं करते हैं तो फिर कभी कभी याद आता है तो ऐसी बात नहीं बनती। संसारक काम काज करते हुए भी भक्त एक जगह कहते हैं, नामदेव जी त्रिलोचन जी कहते हैं, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। वो ऐसा है, नामा कहे त्रिलोचना मुक्ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। संसार के हाथों पैरों से काम करते चलते हुए जो अपना चित है उस परमात्मा से जोड़ करके रखो। उठत बैठत हर हर ध्याई, अंदिन सुकृत करिए रात दिन। सुकृत कहते हैं कि धर्म को करना चाहिए, पुण्य को करना चाहिए। जो निषिद्ध कर्म है उनको छोड़ करके जो कर्म करने के लिए भगवान अथवा गुरु लोग कहते हैं उन कर्मों को करना, विहित कर्मों को करना चाहिए। रहाओ के आगे कहते हैं,
संत का मार्ग धर्म की पौड़ी पोवड़ भागी पाए।
अब कहते हैं संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, जो संत लोग मार्ग बताते हैं ना वो ही धर्म की पौड़ी है। यानी संतों का बताया हुआ जो मार्ग है ना वह ही धर्म की पौड़ी का अर्थ, सीढ़ी कह देते हम लोग सीढ़ी। संतों के द्वारा बताया हुआ मार्ग धर्म की सीढ़ी है। धर्म की सीढ़ी के ऊपर जब हम सवार होंगे, यानी सीढ़ी किस लिए लगाई जाती है, जो सीढ़ी होती है उसको हम लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं कि जैसे हम किसी छत के ऊपर चढ़ना होता है तो उसको सीढ़ी लगाते हैं, मंजिल के ऊपर पहुंचने के लिए जहां हमने पहुंचना है सीढ़ी लगाते हैं हम। तो यहां हमारी मंजिल है, पहुंचना है हमने कहां, मुक्ति रूपी हमारी मंजिल है। मुक्ति चाहिए, सुख चाहिए, आत्मिक स्वरूप पर पहुंचना है तो सबसे पहले धर्म चाहिए हमारे को। धर्म जब शुरू होता है ना जिज्ञासु का, अपने स्वरूप की तरफ चलना जब शुरू होता है तो कहां से, पूर्व मीमांसा में जैमिनी जी महाराज कहते हैं अथा तो धर्म जिज्ञासा। यानी पहले धर्म, धर्म से पूरा कर्मकांड उपासना सब आ जाती है। पहले हमारे को धर्म ग्रहण करना पड़ेगा, धर्म में मर्यादा रख करके, तो उसके अनुसार जब हम उपासना करते हैं धर्म। संत का मार्ग, संतों का मार्ग कौन सा है, कौन सा रास्ता बताते हैं संत लोग, धर्मो रक्षति रक्षिता ऐसा कहते हैं कि धर्म को आप जब ग्रहण करते हो, धर्म के अनुसार आपका जीवन होता है तो धर्म आपकी रक्षा करता है। तो संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संतों का बताया हुआ जो मार्ग है ये धर्म की सीढ़ी है। परंतु इस धर्म की सीढ़ी के ऊपर चढ़ता कौन है, कोवड़ भागी पाए। जिसके भाग उदय होते हैं ना, जिसके पूर्ण पूर्वले कर्म का उदय होता है ना, उसको ये धर्म का मार्ग धर्म का रास्ता मिलता है। नहीं तो संसार में बहुत लोग आते हैं आकर के चले जाते हैं, बहुत लोगों ने जन्म लिया चले गए, लेकिन जिसको प्राप्त होता है सत्संग महापुरुषों की संगति उसको ये धर्म का मार्ग मिलता है, संत का मार्ग, धर्म की पौड़ी। परंतु किसको प्राप्त होता है? कोविड भाग्य, कोई बड़े भाग्यवान पुरुष को प्राप्त होता है। बड़ भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुर्मत खोई। जब कोई बड़े पूर्वले अच्छे कर्मों का संचय होता है ना, तो सत संगति मिलती है महापुरुषों की। सत संगति संस्कृति कर अंता, ऐसी वह सत संगति है, ऐसा संतों का संग है। संतों के संग से धर्म का मार्ग, धर्म का रास्ता मिलता है, कोई बड़े भाग्यवान पुरुषों को मिलता है।
कोट जन्म के किल विखना से हर चरणी चित लाए।
कोट जन्म के किल विखना से, कौन सा ऐसा रास्ता है? ये धर्म का रास्ता ऐसा है, जब कोई इस धर्म के रास्ते से चल करके उस मंजिल की तरफ चलता है, तो जब उस मंजिल तक पहुंच जाता है फिर क्या होता है? कोट जन्म के किल विखना से, करोड़ जन्मों के जो किल विष हैं, पाप हैं, एक जन्म के नहीं है, कोट कुतंत्र के पाप हैं हमारे, एक जन्म के थोड़ी हैं। इतने जो पाप हैं, केल विष का अर्थ है पाप, जन्म जन्मांतरों के पाप, नाश से वह नाश हो जाते हैं। यानी जो हमारे कर्म है ना, संचित कर्म है, वह कर्म और क्रियमान कर्म, उन कर्मों के संस्कार हमारे अंदर हैं। जब धर्म के रास्ते से, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग से, उनकी बताई हुई विधि से जब हम चिंतन करते हैं, तो जो करोड़ों जन्मों के कर्मों के संस्कार हैं वो हर चरणी चित लाए। जब हरि परमात्मा के चरणों में हमारा अनुराग होता है, चित्त हमारा लगता है हरी के चरणों में, तो फिर क्या होता है? यानी चरणों में चित लगाने का मतलब क्या है? प्रेमा भक्ति उपासना। जब गुरु के विधि के द्वारा हम उपासना करते हैं, प्रेमा भक्ति करते हैं ना, तो फिर कोट जन्म के किल विखना से उस कर्म के उपासना, निष्काम कर्म, निष्काम उपासना के प्रभाव से क्या आता? हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, हमारा मल मल और विक्षेप जब दूर होता है तो क्या होता है? मल और विक्षेप की निवृत्ति के बाद अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, जीव के जिज्ञासु के अंदर उस परमात्मा ब्रह्म को पाने की प्राप्ति की इच्छा होती है जब, तो धर्म का मार्ग जब बताते हैं संत का मार्ग, धर्म की पौड़ी, तो उसके अनुसार जब चिंतन करते हैं तो अंत में क्या होता है? हमारे अज्ञान की निवृत्ति होती है जब, तो हमारे अंदर ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी भस्म सात कुरुते अर्जुना, ऐसा कहते भगवान। यह अर्जुन जब ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी, जब ज्ञान अग्नि, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है ना, फिर दग्ध कर्माणी जो कर्म थे ना हमारे, दग्ध हो जाते हैं कोट जन्म के किल विखना से। करोड़ों जन्मों के किल विष कौन है? पाप। पाप क्या है? कर्म। किल विष का अर्थ है पाप, किल विख कहते पाप को। पाप क्या है? कर्म। तो पाप कर्मों के संस्कार थे हमारे अंदर, वो क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उससे पहले नहीं होते हैं। जब उस परमात्मा उस ब्रह्म का साक्षात्कार होता है ना, सीयच्चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे प्रावरे, क्षीयस्य च उसके जो कर्म है ना वो सब कहते क्षीण हो जाते हैं, तस्मिन् दृष्टे प्रावरे, उस जो पारावार से रहित परमात्मा ब्रह्म है उसका साक्षात्कार जब होता है कोट जन्म के किल विकना से, तो करोड़ों जन्मों के जो किलविश है पाप कर्म है और ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाते हैं। हर चरणी चेतलाए, जब उस परमात्मा के चरणों में अनुराग होता उपासना होती है, निष्काम कर्म निष्काम उपासना, सिर्फ ज्ञान का प्रकाश जब होता है तो फिर ऐसी अवस्था प्राप्त होती है।
उस्ताद करहु सदा प्रवे अपने, जिन पूरी काल रखी।
अब महाराज गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं उस्तत करहु सदा प्रवे अपने, इसलिए क्या करना चाहिए जीव को, जिज्ञासु को, जिसको सुख चाहिए मुक्ति चाहिए, संसार का सुख भी मिलता है आत्म सुख भी मिलता है पर कब मिलता है, उस्तत करो। इसलिए कहते प्रभु की स्तुति करो, उस्तत करो सदा प्रभु अपने, जो प्रभु है जो मालिक है जो स्वामी है उसकी उस्तत करो, उसके गुणानुवाद करो। सुनो सबते उत्तम हर की कथा, प्रथम भक्ति संतह कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये नौदा भक्ति भी ऐसी है। तो उस्तत करो, उस्तत करो सदा प्रभु अपने, ये कौन सा प्रभु है कैसा है प्रभु, जैन पूरी काल राखी, जिन्होंने अपनी काल कार्थ शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में जा संपूर्ण संसार में अपनी शक्ति रखी हुई है, उसकी शक्ति के कारण उसकी चेतना के द्वारा जो पूरा संसार प्रकाशित हो रहा है या उसके शक्ति के द्वारा उसके हुक्म में चलता है ये संसार, तस्य भाषा सर्वेदम विभाति, तो ऐसा जो प्रभु है उसकी उस्तत करो, उस्तत करो हो सदा प्रभु अपने, जिन पूरी काल राखी, जिन्होंने अपनी जो कला है अपनी चेतना शक्ति है उसको संपूर्ण संसार में रखा है, उसको आधार बनाया है, या जिन पूरी काल राखी, जिन्होंने इस कालयुग के भयानक समय में काल कार्थ है हमारी हर जगह इज्जत रखी है, काल कार्थ काल युग में काल कार्थ अपनी कला शक्ति इस संसार में बैठाई है रखी है, उस प्रभु के उस्तत करो, ऐसा उपदेश करते हैं महाराज कि आप संसार में आकर के संसारक पदार्थों में रहते हुए संसारक काम काज करते हुए क्या करो, जो आपका विशेष काम क्या है, अवर काज तेरा किते न काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम, जो उस प्रभु की सिफत सलाह करते हैं उसमें जुड़ते हैं, जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा, उनकी लोग पूजा करते हैं, उस्तत करो सदा प्रभु अपने, हर रोज अपने प्रभु मालिक स्वामी इष्ट की उस्तति सलाह सिफत करो।
जी जानता सब भाई पवित्रा, सतगुर की सच साखी,
जी जानता सब भाई पवित्रा, उस परमात्मा की जो ओ जो परमात्मा साक्षी रूप है या उस परमात्मा की साखी जो कथा श्रवण करते हैं या वह साक्षी रूप जो परमात्मा सत्य है वह परमात्मा की जो स्तुति करते हैं उसके प्राप्ति का यत्न करते हैं, जो उस सतगुरु की शरण में चले जाते हैं जिसके पास केवल सत्य की साखी है, सत्य का उपदेश है। जो ऐसे सतगुरु की शरण जाते हैं ना, जीव जंत सब भय पवित्रा, कोई भी जीव ऐसे सतगुरु की शरण जो चला जाता है जिसके पास जिस गुरु से सच की प्राप्ति होती है, जो सतगुरु सत्य स्वरूप है, जो उनकी शरण में चले जाते हैं जीव जंत सब भय पवित्रा, वह पवित्र हो जाते हैं। पवित्र क्यों हो जाते हैं? उनके अंदर जो अज्ञान है या उन जीव जंतुओं की उन जीवों की अज्ञान के साथ एकता हुई पड़ी है, अनित्य है, जो झूठ है संसार उस झूठ के साथ उनका संग है, असत का जिनको संग है, वो जब उस गुरु के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? मंगना था सच एक, वो सत्य की जांचना करते हैं, नाम की जांचना करते हैं। तो उनको गुरु के पास जाने से सतगुर की सच साखी, गुरु के पास जाने से क्या होता है कि सच की साखी करते कथा या बोध या साक्षी रूप परमात्मा जो है वो उनके अंदर उदय हो जाता है, ब्रह्म का साक्षात कर लेते हैं। जब उस सच के साथ अभेद हो जाते हैं, सच का स्वरूप हो जाते हैं, वो कैसा है? सच पुराना नाम थिए, नाम न बैला होए, सच पुराना होवे ना ही सीता कदे न पाटे, कैसा है वह सच स्वरूप परमात्मा? संसारिक पदार्थ जो है, जो भी आपको प्राप्त हुए हैं, और जो उपजो सो बिनस है, जो जानो सो सर पर बुआ, जो जन्मे तिस सर पर मरना, जो भी संसार में पदार्थ है पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। एक सच ऐसा है, महाराज जी कहते हैं कि सच पुराना वो है ना ही, ये ऐसा है सच कि ये तीनों कालों में एक जैसा रहता है, पुरातन है सनातन है, पर सच पुराना होवे ना ही। और सच ऐसा है कि कभी पुराना नहीं होता, जीर्ण शीर्ण नहीं होता, वो आद सच है, जुगाद सच है भी सच है, नानक वो सी भी सच ऐसा है। सच पुराना होवे ना ही सीता कदे ना पाटे, ना तो वो फाड़ता है, ना पुराना होता है, ना उसको मैल लगती है। ऐसा जो सच है, जो साक्षी रूप है सच, वो कहां से प्राप्त होता है? गुरु की शरण में जाने से, सतगुर की सच साखी। एक वचन और करते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज, सत पुरख जिन जाने आ सतगुर तिसका नाम, यहां कहते सतगुर की सच साखी, इसको समझेंगे कैसे? तो महाराज जी समझाते हैं कि सत पुरख जिन जाने आ सतगुर तिसका नाम, जिसने उस सत पुरुष को जान लिया है, जो उस सत के साथ अभेद हो गए हैं, उनका नाम है सतगुरु। सत पुरख जिन जाने आ, पुरुष का अर्थ है जो सभी हृदय में विराजमान है और सत्य है, उस सत्य को जिसने जान लिया है, जो उस सत्य के साथ अभेद हो गए हैं, वो है सतगुरु। तो ऐसा जो सतगुरु सत स्वरूप गुरु है, तिसके संग सिख उधरै, जब ऐसे सतगुरु का दर्शन, ऐसे सतगुरु की सन्निधि मिलती है, जब शिष्य ऐसे सतगुरु के पास जाता है, उसके पास जाने से, उसके पास क्यों जाता है शिष्य? तो इस बात का खुलासा कर करती है। भगवती श्रुति कहती है कि तत् विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। ऐसे वेद भगवान कहते हैं कि शिष्य को क्या करना चाहिए, तत्व ज्ञानार्थम, जो तत्व ज्ञान है उसकी पूर्ति के लिए, उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए शिष्य को क्या करना चाहिए, गुरु में वाभिगच्छे, उसको गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए, समित पाणी, हाथ में कुछ ले करके। तो कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्, जो गुरु श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। वो कौन सा गुरु है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कौन है, जिसके बारे में महाराज जी कहते हैं सात पुरख जन जानिया सतगुरु तिसका ना हो। और जिसने सत्य परमात्मा ब्रह्म का दर्शन किया है, जो सत्य के बारे में जानने का अर्थ श्रोत्रिय है, जाने का अर्थ क्या, जो जानता है, कैसे जानता है श्रोत्रिय, उसने उस सत्य के बारे में श्रवण करके निश्चय किया है, साक्षात्कार किया है। तो ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ कौन है, सात पुरख जिन जाने, जिसने उस सात पुरख परमात्मा ब्रह्म का जान लिया है। जाने का मतलब क्या, साक्षात्कार किया है, सतगुरु तिसका नाओ, उसका नाम सतगुरु है, तिसके संग सिख उधर है। उस ऐसे गुरु की सन्निधि में जब जाता है शिष्य, तो उधर है, उसका उद्धार हो जाता है, तिसके संग सिख उधर है, नानक हर गुण गाओ। तो ऐसे गुरु की बात करते हैं, जीव जंत सब भय पवित्रा सतगुर की सच साखी। ऐसे सतगुरु के पास जा करके साक्षी रूप सत्य की प्राप्ति करने से जीव जंत सब भय पवित्रा, जीव जंत सारे पवित्र हो जाते हैं।
विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया,
विघ्न विनाशन सब दुख नाशन। अब फिर कहते हैं सतगुर नाम दृढ़ाया, जब सतगुरु की शरण में गए तो सतगुरु ने क्या किया, नाम दृढ़ाया, गुरु ने नाम की युक्ति बताई, उपदेश दिया, तो उस उपदेश से, नाम जपने से, गुरमंत्र का अभ्यास करने से क्या हुआ, विघ्न विनाशन। जो गुरमंत्र का अभ्यास करते हैं गुरु के बताए हुए मार्ग से, गुरु की बताई हुई विधि से, जब कोई जिज्ञासु कोई जीव गुरमंत्र का गुरुपदेश का अभ्यास करता है, तो उसको फल क्या मिलता है, विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, उसके सारे विघ्नों का नाश हो जाता है, सब दुख नाश, सारे दुखों का नाश हो जाता है। कोई आध्यात्मिक हो जा आदि भौतिक जा आदि दैविक, तीनों दुखों में से कोई भी दुख हो, सब दुख नाशन। एक जगह और कहते हैं महाराज जी, घोर दुख्यं अनक हत्यं जन्म दारिद्र्यं महाविख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक, जैसे पावक काष्ट भस्मं करोत। कोई भी कितना बड़ा पापी हो, घोर दुख्यं भयानक दुख से दुखी हो, अनक हत्यं, भले उसने किसी ब्रह्म ज्ञानी की हत्या भी क्यों ना की हो, घोर दुख्यं अनक हत्यं, और जन्म दरिद्रं, एक जन्म का नहीं जन्म जन्मांतरों का जो कंगाल हो, महाविख्यादं अनेक प्रकार के झगड़े में फंसा हो, इतना कोई भयानक दुखी हो, तो ये सबका नाश सबकी निवृत्ति कैसे होती है, मिटंत सगल सार सारे कहते मिट जाते हैं, मिटंत सगल सिमरंत क्या सिमरंत हर नाम नानक। उस परमात्मा का नाम उच्चारण करने से, गुरु उपदेश का अभ्यास करने से सारा कुछ मिट जाता। कैसे? जैसे पाप काष्ठ भस्म करोत, जैसे अग्नि में जितनी मर्जी आप लकड़ी डाल दो, एकदम कीतो मुंह घना भोरी दित्ती भो हाहे। थोड़ी सी चंगारी जब डालते हैं तो जैसे लकड़ियों का ढेर भस्म हो जाता, ऐसे तो कहते विघ्न विनाशन सब दुख नाशन। जब नाम दृढ़ करवाया गुरु ने तो सभी विघ्नों का नाश हुआ, सभी दुखों की निवृत्ति हो जाती है। विघ्न विनाशन सब दुख दासन सतगुर नाम दृढ़ाया, होए पाप
पाए सब पावन। जान नानक सुख कर आया।
अब समाप्ति करते हैं महाराज जी परम पवित्र उपदेश की। अंत वाली पंक्ति में कहते हैं खोए पाप भय सब पावन, जन नानक सुख घर आया। खोए पाप यानी सारे जो पाप थे ना, विद्यते हृदय ग्रंथि शुद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराभरे, ऐसा कहते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि, अब क्या हुआ खोए पाप, जब गुरु की शरण में जाकर के अभ्यास किया, गुरु की कृपा हुई, अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ ना जिज्ञासु, उसकी अवस्था बताते हैं जन नानक सुख घर आया। जब अपने सुख घर में, कौन सा आत्मिक सुख जो घर है, आत्मिक स्वरूप में जब स्थिति हुई ना, ब्रह्म में स्थित हुआ, ब्रह्मित ब्रह्म भवति जब हुआ, जब आत्मिक स्थान में टिक गया, तो उसको उसका स्वरूप क्या है ब्रह्म ज्ञानी का, क्या स्वरूप है? खोए पाप क्या हिद्यते विद्यते हृदय ग्रंथि। पाप यानी क्या था? कर्म यानी द्वैत, वो सब भेदन हो गई जो हृदय की ग्रंथि है ना, जड़ चेतन की। सबसे कठिन तो वो है, वो सबसे कठिनाई कहते हैं ना तुलसीदास जी महाराज, ये कहते यद्यपि वृषा चेत जड़ की ग्रंथि पड़ी गई ना जो, वो कहते हैं कि ऐसी है कि वो यद्यपि मृषा है तो मिथ्या है चित जड़ की ग्रंथि, पर छूटत कठिन नहीं, छूटती बहुत कठिन है। जब जिज्ञासु गुरु शरण में जाकर के चिंतन करता है तो फिर अहम ब्रह्मास्मि जब होता है तो उसकी अवस्था क्या है? खोए पाप भय सब पावन, पवित्र हो जाता है, उसके सारे पापों की कर्मों की संस्कारों की निवृत्ति हो जाती है, जन नानक सुख घर आया, ऐसी अवस्था होती है। वह पावन परम पवित्र उपदेश गुरु अर्जन देव महाराज जी का बख्शिश किया हुआ, इस उपदेश का हम लोगों ने बैठ करके चिंतन किया, ऐसी अगाध बोध वाणी है इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। केवल हम लोग जो आप अपनी बुद्ध है जेती, जो महापुरुष हैं उनकी बात नहीं करते, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो छोटे से विद्यार्थी हैं। महापुरुषों के समक्ष बैठ करके अपने जो अक्षर सीखे ना, वो महापुरुषों को सुनाना चाहते हैं, व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए जो कुछ भी बोला, जो कुछ भी कहा, उसमें हमारी बहुत बहुत गलती हो सकती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज और सभी महापुरुष सभी संगत आशीष देना, अरदास करना, प्रार्थना करना कि हम लोग इस गुरबाणी को समझ सके, अपने अंदर धारण कर सके, इतनी ही विनती प्रवान करिए।
विघ्न विनाशन सब दुख नाशन। सतगुर नाम दृढ़ाया, कोई पाप पाए सब पावन, जन नानक सुख घर आया।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
देखा आज यहाँ जरा सुनाई।